हम आपका स्वागत करते हैं यीशु मसीह का गिरजाघर अंतिम दिनों के संतों का महासहायक संथा सभा में। हम यहाँ सॉल्ट लेक शहर यूटा के सम्मेलन केंद्र में इस सुंदर सांझ के इकट्ठे हुए हैं। कितना विशाल दृश्य है आप सबको देखना। हम जानते हैं इसी तरह सहायक संस्था बहनें दुनिया भर में इकट्ठी हुई हैं। हम आशा करते हैं कि आप हमारे प्रेम को महसूस कर सकते हैं। प्रधान थॉमस एस मॉन्सन, जो इस सम्मेलन में नेतृत्व हैं, ने कहा है कि मैं संचालन कहूं। हम खुश हैं प्रधान मॉन्सन और उनके सलाहकारों प्रधान हेनरी बी आयरिंग और प्रधान डियटर एफ उक्तर को, जो आज रात हमारे साथ हैं। हम एल्डर्स जेफरी आर हॉलैंड और डी टॉड क्रिस्टोफर्सन को, जो 12 देवदूतों के परिषद में हैं, और बिशप गैरी जी ई स्टीवेंसन गिरजाघर के बिशपरिक की अध्यक्षता के का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम इस बहनों भाइयों से प्रेम करते हैं। मंच पर मेरी मेहनती सलाहकारें बहन कैरल एम स्टीवेंस और लिंडा एस रीव्स बैठी हैं। हम अपने प्रिय बहनों को, जो जवान महिला और प्राथमिक की महाअध्यक्षताओं में के बोर्ड में और सदस्यों को पहचानते हैं, हम तुम सबको के स्वागत करते हैं जो यहाँ है और जो टीवी, सैटेलाइट, इंटरनेट और अन्य प्रकार के साधनों के से भाग ले रहे हैं। प्रेसिडेंट मॉन्सन की ऐतिहासिक पुकार के बाद, जब उसने प्रचारक उम्र को बदला था, हमारे साथ गायक मंडली द्वारा की दी जाएगी, जो प्रोवो यूटा के मिशनरी ट्रेनिंग सेंटर की है। एमिली वॉडली ने निर्देशन में साथ देंगे ऑर्गन पर बॉनी गुडलिफ। गायक मंडली और सभा सम्मेलन को रिडीमर ऑफ इज़राइल गा कर शुरुआत करेंगे। उसके बाद बहन लॉरेन स्वेंसन प्रेयर देगी।
Father in heaven,
हमारे पिता परमेश्वर, हम आभारी हैं कि हम इस शाम को कॉन्फ्रेंस सेंटर में इकट्ठा हो सके। हम धन्यवाद देते हैं इस सहायक संस्था के ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम आभारी है कि हम अपने भविष्यवक्ता प्रेजेंट मॉन्सन से एक भाषण सुन सके और रिलीफ सोसाइटी के लीडर्स के लिए जो आज शाम हमसे बात करेंगे कि आपके आशीष उन सब के ऊपर रहे. हम आभारी हैं अपने मिशनरी क्वाया के लिए कि इन बहनों जो हमारे आज शाम को संगीत गाएंगे कि हम उनके संगीत को सुन सके. हम आपके आशीष मिशनरीज के ऊपर मांगते हैं कि वो दुनिया भर में आपके संदेश को प्रचार कर सके. हम आभारी हैं आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए, उनके प्रेषित के लिए. हम आज शाम पवित्र आत्मा को मानते हैं कि आज शाम कि हम जिन भाषा को सुन सके आज रात कि वो उसे हम सब सीख सके. ये सब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहते हैं, आमेन.
धन्यवाद बहनों उस सुंदर गीत के लिए. अब मेरा सौभाग्य होगा आपसे बातें करने के लिए. मेरे टिप्पणियों के बाद गायक मंडली हमें दो गीतों को एक साथ गाएंगी, गो फोर्थ विद फेथ और एस सिस्टर्स इन ज़ायन. बहर कैरल एम स्टीवन सहायक संस्था में अध्यक्षता के पहले सहकार उसके बाद हमसे बात करेंगी, जिसके बाद बहन लिंडा एस रीव्स हमसे बात करेंगी. गायक मंडली और सभा इसके बाद खड़े होकर एक साथ गाएगी, आई गो वे यू वॉन्ट मी टू गो.
मैं एक कहानी से शुरुआत करना चाहती हूँ जो मुझे प्रेरित करता है. एक सांझ को एक आदमी ने अपने 5 भेड़ों को रात्रि के लिए घेरे में बुलाया. उसका परिवार दिलचस्पी से देख रहा था जब वो सादगी से बुला रहा था, आओ चलो, और तुरंत सब 5 सर उठाकर उसके दिशा में मुड़े. चारों भेड़े उसकी ओर दौड़ने लगे. बड़े प्यार दुराल से उसने हर एक के सर को थपथपाया. भेड़े उसके आवाज जानते थे और उससे प्रेम करते थे. मगर 5वें भेड़े दौड़ती नहीं आई. वो एक भारी भेड़ी थी जिसके हाल ही में उसके मालिक ने दिया था, जिसने कहा कि वो जंगली, जिद्दी और हमेशा अन्य भेड़े को गुमराह करती थी. नया मालिक ने भेड़ी को स्वीकार किया और उसे अपने ही खेत में बांध रखा था ताकि वो एक जगह रह सके. उसने धैर्य से उससे और आने भेड़ों के प्रेम सिखाया कि उसकी गले में सिर्फ एक छोटी रस्सी थी. उस शाम जब परिवार देख रहे थे, वो आदमी भेड़े को पास गया जो खेत के किनारे खड़ी थी और एक बार फिर आहिस्ता से कहा, आओ चलो, अब तुम बंद नहीं हो. इस कहानी के शब्द में मैं प्रार्थना करती हूँ कि पवित्र आत्मा हमें आज रात एक शक्ति वादों को निभाने के बारे में सिखलाए. वादों को बनाने और निभाने का मतलब है स्वर्ग पिता और यीशु मसीह के साथ जुड़ना. उद्धारकर्ता का जीवन जीना जिम्मेदारी का काम है. इसका मतलब है उस पर भरोसा करना और इच्छा करना कि तुम उसके प्रेषित के अनंत उपहार का कीमत अदा करोगे आभार दिखाकर. एल्डर जेफरी आर हॉलैंड ने बतलाया कि एक वादा एक धार्मिक समझौता का बंधन है. एक पवित्र वादा परमेश्वर ने हमारे पिता के साथ किया ताकि हम एक ऐसे तरीके से जिएंगे और सोचेंगे और रहेंगे उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह की तरह. इसके बदले में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हमें आनंद जीवन का संपूर्ण महिमा वादा करता है. इस समझौता के बदले में प्रभु कानून देता और हम उनका पालन करने को स्वीकार करते हैं. अपने वादों को बनाना और निभाना ये दिखाता है कि हम उद्धारकर्ता जैसा बनना चाहते हैं. लक्ष्य है कोशिश करना सबसे अच्छी तरह इस गीत का बोल करता है. मैं वहां जाऊंगा जहां तुम चाहते हो. मैं वो करूंगा कहूंगा जो तुम चाहते हैं कि मैं कहूँ, मैं वो बनूंगा जो तुम चाहते हो कि मैं बनूं। और ऐसा हुआ कि मैं नीफाई ने परमेश्वर के मेमने के शक्ति को देखा कि वो प्रभु के शर्तनामा के अंतर्गत आने वाले लोगों के ऊपर आई और वो सत्यनिष्ठा का हथियार लिए हुए और परमेश्वर के शोभमान में सामर्थ हो रहे थे। मैं हाल ही में एक नई प्रिय दोस्त से मिला। वो एक जवान बहन है जिसने मंदिर का एंडाउमेंट के बाद ही की गवाही दी। उसने मजबूती महसूस की उन बेकावे और जिससे वो संघर्ष करती थी पहले। जब हम अपने वादों को निभाते हैं, हमें हिम्मत और मुसीबतें भी मिलती है एक दूसरे के बोझ को ढूंढने के लिए। एक दुखित बहन का एक बेटा था जो खतरनाक जानलेवा चुनौती से गुजर रहा था, क्योंकि उसका विश्वास था कि सहायक संस्था की बहनें वादों को निभाने वाली है। उसने हिम्मत के साथ उन्होंने अपने बेटे के लिए उपवास रखने और प्रार्थना करने को कहा। एक और बहन ने बताया कि काश उसने भी बहनों से ऐसा ही निवेदन की थी। लूसी मैक्स स्मिथ का सलाह पहले सहायक संस्था की बहनों से ज्यादा आज के लिए है, ना कि पहले था। हमें एक दूसरे को चाहना है, देखभाल करना, सहानुभूति देना और उद्देश्य पाना, ताकि हम सब स्वर्ग में एक साथ बैठ सके। ये वादा निभाने और शिक्षण भेंट करने का सबसे बेहतर तरीका है। मॉर्मन धर्मशास्त्र हमें याद दिलाता है कि भविष्यवक्ता अल्मा को विरोधी बेटे का बोझ सहना पड़ा, मगर अल्मा खुश नसीब था कि उसके पास वादा निभाने वाले भाई और बहन थे सुसमाचार में, जो प्रभु में अच्छी तरह परिचित थे और वो जानते थे एक दूसरे के बोझ को ढोने का मतलब। हम मोजाया के वेश से वाकिफ है जो अल्मा के प्रार्थनाओं के भारी विश्वास को बतलाता है अपने बेटे के लिए, मगर ऐसा लिखा है कि प्रभु ने इन लोगों की और अपने उस सेवक अल्मा की प्रार्थनाओं को भी सुना। हम जानते हैं कि प्रभु हमेशा खुश होता है जब एक इंसान पश्चाताप करता है। प्रेसिडेंट हेनरी ब्री आयरिंग का सलाह का पालन करें जो कहता है, जल्द शुरुआत करो और स्थिर रहो वादों को बनाने और निभाने में। क्या तुम चाहते हैं 8 साल उम्र के बच्चे भी वादों को निभाए? जब हमने साथ में सलाह की, सुझाव दिया गया कि एक तरह से बच्चों को तैयार कर सकते हैं पवित्र बपतिस्मा के वादों को बनाने और निभाने के लिए है कि हम उन्हें मदद करें और एक छोटे से वादे को बनाने और निभाने में। विश्वासी माता पिता को जानना चाहिए कि कितनी अच्छी तरह वो अपने बच्चे के जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। जब माता पिता निजी प्रतिकारण को ढूंढेंगे और आजमाएंगे, मिलकर सलाह करेंगे और सुसमार के समाचार के साधारण सिद्धांतों को बतलाएंगे और सिखलाएंगे, उनके पास शक्ति होगी परिवारों को मजबूत और सुरक्षित रखने की। उसने मेरे आजा ने कहा, उसने अपने दिल पर लिखो, उसे छोटी से गीत के प्रेम सच्चाई और शक्ति से सिखलाया गया था, क्योंकि आजा जी ने अपने वादों को अपने दिल पर लिख दिया था। एल्डर रिचर्ड जी स्कॉट ने एक जानमानी बुद्धिमान माँ बच्चों को वादों को निभाने वाले कोशिश में शामिल करती है। वो पड़ोसियों, दोस्तों और वो सदस्यों के भोज खुशी से ढोती है और उन्हें सहानुभूति देती है जिन्हें उसकी जरूरत है। ये आश्चर्य की बात नहीं जब उसकी जवान बेटी हाल ही में अपने माँ के पास आई जानने के लिए कि वो कैसे अपने छोटे दोस्त को सहानुभूति दे सकती है जिसका पिता हाल ही में गुजर गया था। एल्डर रिचर्ड जी स्कॉट ने देखा, इस दुनिया को सबसे अच्छा आशीर्वाद जो हम दे सकते हैं वो है एक मसीह केंद्रित घर जहां सुसमाचार सिखलाया जाता, वादा निभाया जाता और प्रेम भरा रहता। हम किस तरह से ऐसा घर बना सकते हैं जहां अपने बच्चों को तैयार करने के लिए कि वो मंदिर वादों को बनाए और निभाए? हम मिलकर पवित्र आत्मा को सुनना सीख सकते हैं क्योंकि मंदिर एंडाउमेंट प्रतिकारण के से हासिल किया जाता है. हमें यह जरूरी गुण सीख लेनी चाहिए. हम मिलकर चिन्हों का इस्तेमाल सीख सकते हैं. हम मिलकर सीख सकते हैं कि शरीर क्यों शुद्ध है, क्यों उसे मंदिर कहा जाता है और कैसे कायदे वाले कपड़े और सवरने से मंदिर के कपड़े पवित्र रह सकते हैं. हम खुशियाली की योजना को धर्मशास्त्र में ढूंढ सकते हैं. जितनी अच्छी तरह से हम स्वर्ग पिता की योजना को जानेंगे और धर्मशास्त्र में दिए गए उसके प्रश्चित को, उतना अर्थपूर्ण हमारा मंदिर जाना होगा. हम मिलकर ऐसा शब्दों के अर्थ जैसे एंडाउमेंट, धर्मशास्त्र, सीलिंग, पुरोहित, चाबियां और अन्य शब्दों को जो मंदिर भक्ति से जुड़ा है को समझे. हम सिखला सकते हैं कि हम मंदिर जाएंगे स्वर्ग पिता से वादों को बनाने के लिए और हम घर लौटे उसको निभाने के लिए. हम सिखलाते समय अच्छे, बेहतर और सबसे अच्छा सीख को याद कर ले. अच्छा है अपने बच्चों को मंदिर के बारे में सिखलाए. बेहतर होता है तैयारी करना और आशा करना कि वो वादों को बनाए और निभाए. ये सबसे अच्छा होगा अगर हम उदाहरण से उन्हें दिखलाए कि हम खुशी से अपने बपतिस्मा और मंदिर के वादों में लगे रहेंगे. प्रधान मोनसन ने सिखलाया, पवित्र वादों को हमें सम्मान से निभाए चाहिए और खुशियाली ये लिखे उनके प्रति विश्वासी रहना आवश्यक है. निफाय में सरलता से बतलाता है और ऐसा हुआ कि हम खुशियाली में जिए. इसी अध्याय में पहले हम सीखते हैं कि निफाय और उनके लोगों ने हाल ही एक मंदिर बनाया था. वो तो हसमुख वादा निभाने वाले थे. और अल्मा में हम पढ़ते हैं, मगर देखो निफाय के लोगों में इससे खुशहाल समय नहीं था, निफाय के समय से मोरनाई के दिनों तक. क्यों? फिर हम एक पहले वर्ष में सीखते हैं कि वो विश्वासी थे प्रभु के आज्ञाओं का पालन करने में. वादा निभाने वाले आज्ञा का पालन करने वाले हैं. मैं इस धर्म शास्त्र को पसंद करती हूँ जो कहता है, और अब जब लोगों ने इस बातों को सुन लिया था, आने की बपतिस्मा के वादों के शब्दों को, उन्होंने थपोड़ी बजाई खुशी से और कहा, यही हमारे हृदय की इच्छा है, मुझे उनके मन की इच्छा पसंद है. एक रविवार को एक जवान बहन ने खुशी से कहा, आज मैं प्रभु भोज से ले सकूंगी. पिछले बार कब हमने इस सौभाग्य में आनंद मनाया था और हमने उसे इजहार किया. हम ऐसा करते हैं हमेशा उद्धारकर्ता को याद करके और हमेशा उनके आज्ञाओं का पालन करके, जिसमें शामिल है उनके रविवार को पवित्र रखना. हमेशा हम उन्हें याद रख सकते हैं जब हम निजी और पारिवारिक प्रार्थना करते, दैनिक धर्मशास्त्र अध्याय करते और साप्ताहिक परिवार शाम सभा करते हैं. वादों को बनाने से और खुशी से निभाने से पवित्र और बचाने वाले धर्म सिद्धांतों को जायजता और जीवन मिलता है. जिसकी जरूरत है वो सब पाने के लिए जो पिता का है. धर्म सिद्धांत और वादे धार्मिक आवश्यकता है जिस पर प्रधान हेनरी बी आयरिंग ने सिखलाया. अंतिम दिन संत वादे के लोग हैं. बपतिस्मा के दिन से हमारे जीवन के धार्मिक आवश्यकताओं को हासिल करने तक पर परमेश्वर से वादा करते हैं और वो हमसे वादा करते हैं. वो हमेशा अपने वादों को निभाते हैं और अपने नियुक्त सेवक के जरिए. मगर ये हमारा जीवन का आवश्यक परीक्षा है दिखाने के लिए कि क्या हम उनके साथ अपने वादों को बनाएंगे और निभाएंगे. हम में से कौन जेकब और रेचल के प्रेम कहानी से प्रेरित नहीं हुआ है जो ये है, और जेकब ने रेचल के लिए 7 वर्ष सेवा की और वो उसको रेचल की प्रीति के कारण थोड़े ही दिनों के बराबर जान पड़े. बहनों, क्या हम अपने वादों को इस तरह के घेरे और प्रीति भरे प्रेम से निभाते हैं? क्यों उद्धारकर्ता अपने पिता के साथ किए वादे को निभाना चाहता था और अपने दिव्य मिशन को पूरा करना चाहता था? दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए, वो उनके स्वर्ग के पिता के प्रति उसका प्रेम था हमारे लिए, क्यों पिता चाहता था कि उसका एक लौता और संपूर्ण पुत्र अखंड पीड़ा को सहे, ताकि वो दुनिया के पापों, चिंताओं, बीमारियों और खामियों को सह सके, और वो सब भी जो इस जीवन में गलत है। हमें जवाब इन शब्दों में मिलता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दिया। अगर हम अपने सभी आशीर्वादों को अपनाएंगे जो हमें मुक्ति के द्वारा मिला है, ऐसा कुछ नहीं जो प्रभु हमसे मांगेगा जिसे हम उत्सुकता और इच्छा पूर्वक नहीं करेंगे। भविष्यवक्ता जोसेफ फील्डिंग स्मिथ के इस वाक्य के अनुसार, वादा निभाना एक तरीका है हमारे उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता और स्वर्गीय पिता के लिए संपूर्ण प्रेम के प्रति, न खत्म होने वाले प्रेम को दिखलाने के लिए। एल्डर हॉलैंड ने दया से सुझाव दिया, मुझे नहीं मालूम है न्याय के दिन पर हमारे अनुभव किया होगा, मगर मैं बहुत आश्चर्यचकित होऊंगा अगर किसी समय उस बातचीत में परमेश्वर हमसे वो पूछेगा जो मसीह ने पीटर से पूछा था, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? आज रात मैं हर एक को आमंत्रित करती हूँ कि ये जांच करो कितना हम उद्धारकर्ता से प्रेम करते हैं उनकी आज्ञाओं को मानने से। उद्धारकर्ता ने कहा, जिसके पास मेरी आज्ञा है और वो उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। हमें याद रखें कि जो बहक गए थे पहले या जो अभी संघर्ष कर रहे हैं, अच्छे चरवाहे को हाथ को हमारे सर पर महसूस करें और उनके आवाज को सुने कहते हुए, आओ चलो, अब तुम नहीं बंद हो, तुम मुक्त हो। वो उद्धारकर्ता थे जिसने कहा था, अच्छे चरवाहों में मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। वो ही ये कह सकता है क्योंकि उन्होंने ही अपने वादों को प्रेम से निभाया। सवाल तब है, क्या हम ऐसा करेंगे? हम विश्वास से, खुशहाल हृदय से और एक बढ़िया इच्छा से आज्ञा देती है, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
When my father-in-law passed away, our family gathered
together. जब मेरे ससुर जी मर गए, हमारे परिवार साथ इकट्ठे हुए, जो सभी अफसोस प्रकट करने आए कि स्वागत किया। शाम तक परिवार और दोस्तों से भेंट करते हुए मैंने अपने 10 साल उम्र की के नाती पोटर को देखा। मेरे ससुर जी उसके नानी के पास खड़ा हुआ था। मैंने उसको उसकी नानी के हाथों को सहते हुए गले लगाकर और उसके बगल में खड़े होते हुए देखा। उस अनुभव के दिन बाद मैं इस दृश्य को अपने मन से अलग नहीं कर सकी। मैंने उसे ईमेल किया और बतलाया जो मैंने देखा और महसूस किया था। मैंने पोटर को वह वादा का याद खिलाया जो उसने बैप्टिज्म पर बनाया था। आलमा के शब्दों में मोजाया के 18 भाग से लिखा, और जबकि तुम परमेश्वर के दल में आना चाहते हो और उसके लोग कहलाना चाहते हो और तुम एक दूसरे के भोज को धोने में सहायता देना चाहते हो जिसी वह हल्का हो जाए, और जो दुख से रोते हुए उनके साथ रोना जिसी की तुम्हें अनंत जीवन प्राप्त हो। अगर तुम्हारे हृदय की यही इच्छा है, तब एक गवाह के रूप में तुमने उनके साथ अनुबंध किया है जो तुम उसकी सेवा करोगे और उसकी आज्ञाओं का पालन करोगे जिसकी वह तुम्हारे ऊपर अपनी आत्मा और अधिक उंधेल सके। तब प्रभु के नाम पर बपतिस्म लेने के विरुद्ध तुम्हारे पास क्या कारण है? मैंने पोटर को समझाया कि आलमा ने सिखलाया कि जो बपतिस्म लेना चाहते हैं उन्हें दूसरों की सेवा करने से प्रभु की सेवा को करना जरूरी है तुम्हारे पूरी जीवन तक। मैंने कहा, मैं नहीं जानती कि क्या तुम जानते हो, मगर जिस तरह तुमने नानी के लिए प्यार और इज्जत दिखलाया था, मैं अपने वादों को निभा रहे थे। मैं सिर्फ तुम्हें यह बतलाना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे एक वादे को निभाते देखकर खुश हूँ। जब तुम उन वादों को निभाते हो जो तुमने बनाया जब बैप्टिज्म को लिया, जब तुम पुरोहितों के नियुक्ति के लिए तैयार रहोगे, यह और वादा तुम्हें आश्रय प्रदान करने, दूसरों को आशीर्वाद और सेवा करने में और तुम्हें मदद करेगा मंदिर में बनाए हुए वादों की निभाने के लिए। पोटर ने जवाब दिया, नानी संदेशों के लिए धन्यवाद। जब मैं हमेशा नानी को गला लगाता था, मुझे पता नहीं था कि मैं वादों को निभा रहा हूँ, मगर मैं अपने हृदय में खुशी महसूस किया और बहुत अच्छा महसूस किया। मैंने अपने हृदय में खुशी को समय भी महसूस किया था जब मैं जाना था कि पोटर ने अपने वादों को निभाने के लिए रखा था। बहनों, मैं तुमसे कहने के साथ दुनिया भर में घुमा है। मैंने देखा कि तुम में से पोटर की तरह हो। तुम चुपचाप परमेश्वर की तरह खड़े रहते हो। जब तुम प्यार करो, सुरक्षा प्रदान करो और छोटे और साधारण तरीकों से दूसरों की सेवा करो, तुम सक्रिय तौर की मुक्ति से कार्य में भाग ले रहे हो। परमेश्वर के कार्य इंसान और मरणशीलता और अनंत जीवन देने के लिए। प्रभु के राज्य में पुत्रियां होने के नाते हमने पवित्र वादों को बनाया है। हम सब मार्ग पर अलग स्थानों पर हैं, मगर हम एक साथ काम कर सकते हैं और दूसरों की मदद कर सकते हैं। मसीह में दृढ़ विश्वास रखते हुए आशा की अखद कर सकते हैं। चीनी जवान महिलाओं में एक सलाहकार की तरह सेवा करती है। कई महीने पहले उसने वार्ड के युवा के लिए उभरती हुई गतिविधि को सिखा, ऊपर तक चढ़ाना कि जिस स्थान को मलन के पीक है। जब वह रास्ते के शुरुआत पर पहुंचे, उसकी अच्छी दोस्त एशली भी उसके साथ पहुंची। एशली जो 16 साल की उस थी उस समय उसके पास एक शारीरिक समस्याएं थी जो उससे मुसीबत के कारण वो बहुत जल्द नहीं चल सकती थी। जीन ने बाद में कहा, मुझे बहुत देर नहीं लगा यह भूलने में कि मेरा लक्ष्य को चोटी तक चढ़ना जल्द ही दूसरी तरह की साहसिक काम बन गई, एक साहसिक काम जिसमें रास्ते भर के सुंदरता को देखना उनमें से कई को मैं कभी नहीं देख पाती अगर मैं सिर्फ मलन की चोटी पर चढ़ने की लक्ष्य रखती। जबकि जीन और ऐशी चढ़ रहे थे बाकी डालों से बहुत पीछे, उनके साथ एम्मा जुड़ गई, वार्ड की एक दूसरी जवान महिला जिसने थामकर और उनके साथ चलने को सोचा। एम्मा ने उनको और खुशी दी। जीनी ने याद किया, हमने बैठकर आराम किया, गाना गाया, बातें किया और हंसे थे। मैंने एशली और एम्मा को इतनी अच्छी तरह जाना जो किसी और तरह जान नहीं पाती थी। यह एक दूसरे को रास्ते के मदद करने के बारे में था, कदम कदम पर। जबकि जीनी, एशली और एम्मा एक साथ चढ़े, गाए और आराम किए और हंसे, वे यह नहीं जानते थे कि अरे वे अपने वादों को इस समय निभा रहे हैं। वे एक दूसरे की सेवा प्यार, दया और विश्वास से कर रहे थे। वे एक दूसरे के विश्वास को मजबूत कर रहे थे जब वे एक दूसरे को प्रोत्साहित कर रहे थे और देखरेख कर रहे थे। एल्डर रसल एम नेल्सन ने सिखलाया, जब हम यह जान जाते हैं कि हम वचन दिए गए लोगों की संतान, हम उस जान जाते हैं कि हम क्यों और परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। मरीना कुजेना परमेश्वर की एक वचन बर्ण पुत्री है जो जानती है कि वह क्यों है और परमेश्वर उससे क्या चाहते हैं। वह गिरजाघर की एक परिवर्तित थी। मरीना लूक 22 में प्राप्त हुए मार्गदर्शन पर चलती है। जब तुम परिवर्तित हो तो अपने भाइयों को मजबूत करना। उसके पास हमारे जीवित भविष्यता प्रधान थॉमस एस मॉन्सन के वाणी में विश्वास है जिसने कहा, यही समय है सदस्यों और प्रचारकों को साथ मिलकर कार्य करने के, प्रभु से के अंगूर के बाग में काम करके आत्माओं को उसके पास लेने का। हम जब विश्वास के काम करते हैं प्रभु हमें दिखलाएगा कि किस तरह उसकी गिरजाघर के वध को शकाओं जिसमें हम रहते हैं को मजबूत कर किया जा सकता है। अपने विश्वास से करो जब तुम प्रार्थना से जानो कि तुम्हारे किस परिवार, तुम्हारे दोस्तों, तुम्हारे पड़ोसियों और तुम्हारे जानकारियों को तुम अपने घर बुला सकते हो प्रचारकों से मिलने के लिए कि वे संदेश सुन सके। मरीना इस सलाह को बहाने के लिए देखभाल और देखरेख करती है, उसे भेंट शिक्षकों और इस काम से ज्यादा भी करती है। वह फोन करती है बाटी और अपने दोस्तों को बतलाती है, हमें तुम्हारी जरूरत है। उसके इमारत में हर सप्ताह परिवार घरेलू शाम सभी होता है और पड़ोसियों, सदस्यों और प्रचारकारों को आने के लिए आमंत्रित करती है और वह उन्हें भोजन देती है। मरीना एलर जेफरी आर हॉलैंड के अभी जल्द के चेताओं को समझती है जो यह है, एक निमंत्रण जो दूसरों के लिए हमारे और प्रभु यीशु मसीह के लिए प्यार को कभी भी दुखदायी ये न्याय दिलाने जैसे नहीं दिखेगा। वो उन लोगों के नाम की सूची रखती है जो कहते हैं कि उन्हें क्रोधित किया गया है और वह उनकी देखरेख करती रहती है। मरीना यीशु मसीह के वचन बंद चेला है। भले उसके घर में कोई पुरोहिती के रखने वाला नहीं है, वह हर दिन परमेश्वर को शक्ति को अपने मंदिर के वादों को पूरा करने में महसूस करती है जब वह अंत तक करने में महरणशील बनी नहीं रहती और दूसरों को मदद करती है मुक्ति के कार्य में आगे बढ़ने में। एक क्षण के लिए परमेश्वर को पुत्री के विषय में सोचो जिसे वापस के आने के रास्ता पर चाहिए। अपने स्वर्ग के पिता से उसके बारे में पूछो। शांति रखो और उसके लिए प्रार्थना करते रहो और उस प्रेरणा पर कार्य को जो तुम्हें मिले। मॉर्मन की धर्मशास्त्र में एमन महान कारण के बतलाते हैं कि जिस पर हमें खुशी मनानी है। वो कहते हैं, और अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि कौन से महान आशीर्वाद परमेश्वर ने हमें दिए हैं? क्या तुम बतला सकते हो? उसके जोश में एमन ने जवाब का इंतजार नहीं किया। उसने कहा, सुनो, मैं तुम्हारे लिए उत्तर देता हूँ। और यही वह आशीर्वाद है जो हमें प्राप्त हुआ है कि इस महान कार्य को करने के लिए परमेश्वर के साथ में हम साधन बनाए हैं। मॉर्मन की धर्मशास्त्र में एमन महान कारण के बतलाते हैं जिस पर हमें खुशी मनानी है। वो कहते हैं, और अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि कौन महान आशीर्वाद परमेश्वर ने हमें दिया है? क्या तुम बतला सकते हो? हम प्रभु के राज्य में वचनबद्ध पुत्रियां हैं और हमारे पास अवसर है उसके हाथों के अवसर बनने का। जब हम हर दिन मुक्ति के कार्य को छोटे और सरल तरीकों से करते हैं, देखभाल से, मजबूत करने से और उसके दूसरे को सिखलाने के कार्य में भाग लेते हैं, हम एमन के साथ जोड़ सकते हैं जिसने बतलाया, सुनो, मेरे अनंत पूरी पूर्ण है, मेरे हृदय आनंद से भर उठा है और मैं अपने परमेश्वर में आनंद मांगूंगा। मैं जानता हूं कि मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन परमेश्वर पर अहंकार करूंगा क्योंकि उसी के बल पर मैं सब कुछ कर सकता हूं। इसका मैं बयान हूं यीशु मसीह के नाम से। आमीन।
Sisters, how wonderful it is to know.
कितना आश्चर्यजनक है हम तुमसे दोबारा मिलना। अभी जल्द है मैं एक महिला से मिली जो बपतिस्मा के लिए तैयारी कर रही थी। इस रविवार को वो गिरजाघर 2 मील तक गंभीर कीचड़ में चल कर आई। वो तुरंत ही बाथरूम में गई, अपने कीचड़ से भरे कपड़ों के बदला और साफ रविवार के कपड़ों को पहना। सहायक संस्था सभा में उसने अपने परिवर्तन को बतलाया। मुझ पर उसका पश्चाताप कर लिए साफ और शुद्ध होने की इच्छा ने और उद्धारकर्ता के महान बलिदान ने बहुत ज्यादा प्रभाव डाला। मैं उसके पुराने जीवन को छोड़ने की इच्छा पर प्रभावित हुई ताकि हमारे स्वर्ग पिता की के साथ पवित्र वादा को बना सके। वो अपने प्रेमी से अलग हो चुकी थी, ज्ञान के शब्दों के लिए निश्चल पर्दा छोड़ रही थी, रविवार के काम को छोड़ रही थी और गिरजा आने के लिए, और दोस्तों ने उसे दोस्ती तोड़ दिया यह सुनकर कि वो बपतिस्मा ले रही थी। वह बहुत ही उत्सुक थी अपने सभी पापों को छोड़कर, इसलिए कि साफ हो सके और उद्धारकर्ता के मुक्ति के प्यार को महसूस कर सके। हम जानते हैं कि तुम में से कई ने भी इस तरह के बलिदान को दिया है जब तुमने पवित्र आत्मा के गवाही को महसूस किया था और पश्चाताप की इच्छा किया। शायद किसी भी और समय हम उद्धारकर्ता के प्यार को इतना ज्यादा नहीं महसूस कर सकते हैं जबकि उतना जब हम पश्चाताप करते हैं और उसके प्यार को प्रभाव को अपने के लिए महसूस करते हैं और उसके प्यार और स्वीकृति का भरोसा पाते हैं। कुछ रविवार पहले जब मैं प्रभु भोज के प्रार्थना को सुन रही थी, मैंने भाविक होकर हर शब्द को महान एहसास के साथ सुना जो पादरी पढ़ रहे थे. बाद में मैंने उस पादरी को फोन किया धन्यवाद देने के लिए, क्योंकि मुझे और सभा को प्रभु भोज में महान धार्मिकता का अनुभव को लाने के लिए. वह घर पर नहीं थे, मगर उसकी माँ ने जवाब दिया, वो बहुत खुश होगा जानकर कि तुमने फोन किया था. ये उसका पहला बार था प्रभु भोज के प्रार्थना को कहने के लिए, और हम साथ में तैयार कर रहे थे प्रभु भोज के जरूरतों के बारे में बातें करते हुए और लायक से अपने उद्धारकर्ता के बपतिस्मल वादा को दोहराने पर. मैं इस महान माँ को इतना प्यार करती हूँ अपने पुत्र को बपतिस्मा के वादा के शक्ति के विषय में बतलाने के लिए. एक और माँ जिसके बारे में मुझे पता है, वो गिरजाघर में कई सालों तक अपने चार छोटे बच्चे के साथ अकेले आती थी. शायद ही कभी उद्धारकर्ता के प्रभु भोज के दौरान ध्यान लगा पाती थी. उसने योजना बनाया. अब वो अपने हर शनिवार को समय निकालकर ये जानने के लिए कि उसने सप्ताह भर किया और अपने बातों को सोचती और किस पर उससे पश्चाताप करना है. फिर वो कहती, चाहे कुछ भी अनुभव हो रविवार को मेरे बच्चों के साथ, मैं तैयार हूँ प्रभु भोज को लेने के लिए. क्यों उद्धारकर्ता प्रभु भोज पर इतना महत्व देता है? प्यारी बहनों, क्या महत्व हमारे जीवन में है? हर सप्ताह का बपतिस्मल वादा को दोहराना रखता है. क्या हम उद्धारकर्ता के चमत्कार को जानते हैं कि हर सप्ताह पूरी तरह से हमें साफ कर सकता है जब हम लायक और उस दयालुपन से प्रभु भोज को लेते हैं? प्रधान बोइट के पेका ने गवाही दिया है, वह यीशु मसीह और प्रायश्चित का सुसमाचार का वादा है कि हमारे जीवन के अंतिम समय में वेल से हमारे पापों का पश्चाताप करके और मसीह की लहू के से साफ होकर गुजार सकते हैं. हमारे अदृष्टता महान खुशी मनाते हैं जब हमारे बहनों और उनके परिवारों वादों को बनाते और निभाते हैं, मगर हमें दुख होता है उनके लिए जो अपने जीवन में महान विरोध का सामना करते हैं, क्योंकि जिन्हें हम प्यार करते हैं वे वादों को तोड़ देते हैं. भविष्यवक्ता जेकब निफाई के भाई का प्रभु ने उसके भाग को आज्ञा दिया था कि इस दिन के सच्चे मिलाओ और बच्चों से बातें करो. मैं गवाही देती हूँ कि उसकी बातें खासकर हमारे दिन के लिए बचा कर रखा गया था. वो हमसे ऐसा बातें करता है जैसे कि उद्धारकर्ता खुद हमसे बातें करते हो. जेकब बहुत भोज से तप गया चिंता में जब वो जो पेशन और पिताओं से गवाही दे रहा था. इसी भी मुझे कष्ट हो रही है कि तुमसे संबंधित बातों को तुम्हारी पत्नियों और बच्चों से कहा रहा हूँ, जिसमें से अत्यंत कोमल और सतीमव है. उनका रुदन परमेश्वर के पास ऊपर जा रहा है. उसके कारण कई घायल हृदय लेकर मर चुके हैं. उसके और हमारे दिन के वादों को रखने वाले महिला और बच्चों को जेकब वादा करते हैं कि बुद्धि की स्थिरता से परमेश्वर के देखो और अपने भरी विश्वास के साथ उससे प्रार्थना करो, और वो तुम्हारा कष्टों अपने सिरों को ऊपर उठाकर परमेश्वर के आनंददायी वचनों को धारण करो और उसके प्रेम का भाग लगाओ. मैं प्रार्थना की मजबूती और शक्ति का गवाही देती हूँ. जब हम अपने सच्चे पीड़ा और चाहत को बदलते हैं स्वर्ग पिता को, और उस जवाब का जो मिलता है जब हम सुसमाचार और जीवित भविष्यवक्ताई के शब्दों पर का अध्ययन करते हैं. लगभग 3 साल पहले गंभीर आग ने यूटा प्रोवो के लिए ऐतिहासिक टैबनकल का अंदर को नाश कर दिया था. उसका खोना दोनों समाज और हमारी गिरजाघर के सदस्यों को बहुत दुख हुआ. कई लोग सोचते थे क्यों प्रभु ने ऐसा होने दिया. वे इस आग से बच सकते थे या उस नुकसान को रोक सकते थे. 10 महीने बाद अक्टूबर 2011 के महासम्मेलन में वहाँ ये प्रधान मॉनसन ने बतलाया कि घनिष्ठ रूप से जले टैबनकल को एक पवित्र मंदिर बनाया दिया जाएगा, प्रभु का घर. अचानक हम देख सकते थे कि प्रभु क्या चाहता है. उसने आग नहीं लगाया था, मगर उसने अंदर के भाग को नुकसान किया था, उसने टेबनेकल को एक महान मंदिर की तरह देखा था, एक हमेशा का घर पवित्र आनंद वादों को बनाने के लिए। मेरे प्यारे बहनों, प्रभु हमारी परीक्षा लेता है और देखता है कभी कभी हमारी पूरी क्षमता तक। हमने परियोजन के जीवन को देखा है और शायद अपने भी में तूफान को आते देखा है और सोचते हैं कि प्रिय और देखभाल करने वाले स्वर्गीय पिता ऐसा क्यों होने देता है, मगर वो हमें बिना मदद के नहीं छोड़ता है। वो बाहें फैलाए खड़े रहते हैं हमें अपनी ओर निमंत्रण देते हुए। वो हमारे जीवन को महान मंदिरों में बदल देता है जहां उसकी आत्मा बेहतर रह सकती है। डॉक्ट्रिन ऑफ कवनेंट 58:3-4 में प्रभु हमें बतलाता है, हम अपने प्राकृतिक आंखों से नहीं देख सकते हैं। अभी के समय तुम्हारे परमेश्वर का रूप उन चीजों को लेकर जो उसके बाद आया और महिमा जो आएगा बहुत मुसीबत के बाद, क्योंकि बहुत ही मुसीबत के बाद आशीर्वाद मिलता है। इसीलिए वो दिन आएगा जब तुम बहुत महिमा को ताज मिलेगा। बहनों, मैं गवाही देती हूँ कि प्रभु के पास हम सब के जीवन को लेकर योजना है। कुछ भी जो होता है वो उसके लिए अचानक या आश्चर्य नहीं है। वो सब जानता और सबको प्यार करता है। वो हमें मदद करना, दिलासा देना और हमारे पीड़ा को दूर करना चाहता है जब हम प्रेषित करते हैं और अपने वादों को निभाते हैं। मैं ये जानती हूँ मुसीबतें और कठिनाइयों को जो हम झेलते हैं वो ही चीजें हैं जो हमें मार्गदर्शन देता है उसके पास जाने में, और अपने वादों का पालन करो ताकि हम उसके पास लौट सके। इस बीते साल मुझे प्रभु के प्रेम की बहुत जरूरत थी और चाहत थी। व्यक्तिगत प्रतिकारण को प्राप्त करने के लिए मैंने अपने मंदिर का वादों को और अच्छी तरह से जानना चाहा है और अपने बोझ हल्के किए है। जबकि मैंने इस खास आशीर्वाद के लिए प्रार्थना किया है, मुझे महसूस किया कि आत्मा मुझे मंदिर जाने को कह रही है और मुझे प्राप्त हुए आशीर्वाद के शब्दों को अच्छी तरह सुनने को कहा है। मैं गवाही देती हूँ कि जब मैंने अच्छी तरह से सुना और अपने विश्वास के लिए प्रभु मुझे पर मेहरबान थे और मुझे मदद किया अपने बोझ को कम करने में। उसने मेरी मदद किया प्रार्थना के महान शांति को महसूस करने में, जिसका भी अभी जवाब नहीं मिला है। मैं एक और तरीके पर भी बातें करना चाहती हूँ जो निश्चय और विश्वास देती है। महिला होने कारण कभी कभी हम अपने आप के बारे में बहुत गंभीरता से देखते हैं। इन समय में हमें आत्मा को ढूंढना चाहिए और पूछना चाहिए, क्या प्रभु चाहता है कि मैं अपने बारे में ऐसा सोचूं या शैतान मुझे हराना चाहता है। हमारे स्वर्गीय पिता के प्रतिकृति को याद करो जिसका प्यार संपूर्ण और अनंत है। वो हमें बढ़ती दिलाना चाहता है, ना कि नीचे गिराना। गिरजाघर के सदस्यों की तरह हम कभी कभी ये महसूस करेंगे कि हमें सही LDS परिवार का भाग होना जरूरी है प्रभु से स्वीकार होने के लिए। हम अक्सर में महसूस करते हैं कि हम उस राज्य के लायक नहीं हैं और वहाँ के नहीं, जब हम ऐसा महसूस करते हैं कि हम उस सही परिवार में नहीं हैं। प्यारी बहनों, जब सब कुछ कहा गया और हुआ, वो चीज स्वर्ग के पिता को चाहिए है कि किस तरह हमने अपने वादों को रखा है और हमने कितना कोशिश किया है हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के उदाहरण पर चलने को। मैं गवाही देती हूँ कि यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता है। उसके महान बलिदान के कारण हम हर सप्ताह साफ हो सकते हैं जब हम उसके प्रभु भोज को लायक से लेते हैं। जब हम अपने वादों को दोहराते और आदर करते हैं, हमारे बोझ कम हो सकते हैं और हम पूरी तरह से साफ और मजबूत हो सकते हैं, ताकि हमारे जीवन के अनंत में हम खुशी और अनंत जीवन को लायक से प्राप्त कर सकते हैं। मैं इन चीजों का गवाही यीशु मसीह के नाम से देती हूँ। आमीन।
बहनों, मैं आशा करती हूँ कि हम सब वहाँ जाएं जहाँ प्रभु चाहता है, कहे जो वह चाहते हैं, और सबसे जरूरी बने जो वह चाहते हम बने। हम गायक मंडली और अन्य सभी लोगों के एहसान मंद हैं जिन्होंने इसमें भाग लिया। इसी प्रकार हम आप सबको धन्यवाद देते हैं। अब हमारा सौभाग्य होगा हमारे प्रिय भविष्यवक्ता प्रधान थॉमस एस मॉनसन से सुनने का। उनके टिप्पणियों के बाद गायक मंडली इस सभा के अंत करेंगी मोर होलीनेस गिव मी काकर। उसके बाद बहन ऐना दो अगस्तीनी द्वारा अंतिम प्रार्थना दी जाएगी जो सहायक संता महाबोर्ड में सेवा प्रदान करती है।
Full house. My dear sister.
Pyare behno, is sham hum atma ko mehsoos kar rahe hain. Wo tumhari shakti, bhakti aur tumhari achhai se hai. Swami ne batlaya, tum prithvi ke namak ho. Tum jagat ki jyoti ho. जबकि मुझसे अवसर मिला है तुमसे बातें करने को, मुझे अपनी पत्नी फ्रांसिस की याद आती है कि उसे सहायक संस्था के कितना प्यार था। अपने जीवन में उसने सहायक संस्था में कई पढ़ पर सेवा किया था। जब वो और मैं दोनों सिर्फ 31 साल के था, मुझे कैनेडियन मिशन प्रधान के मुख्यति मिली थी। उस कार्य के 3 सालों तक फ्रांसिस ने वहाँ के सभी सहायक संस्थाओं के संचालन किया, जिसमें ओंटारियो और क्यूबेक की जिला भी शामिल थे। उस कार्य के परिणाम में उसकी कुछ नज़दीक के दोस्त बन गए और बिन नियुक्तियों के कारण बाद में उसे हमारे वार्ड के सहायक संस्था में भी थी। वो हमारे स्वर्ग के पिता की एक विश्वासी पुत्री थी, मेरे प्यारे साथी और मेरे सबसे अच्छी दोस्त। मैं उसे इतना मिस कर रहा हूँ कि शब्दों के बाद बतला नहीं सकता। मैं भी सहायक संस्था से प्यार करता हूँ। मैं तुमसे गवाही देता हूँ कि यह प्रेरणा की संगति हुई थी और यह धरती पर प्रभु के गिरजाघर के एक मुख्य भाग है। यह आसान नहीं है कि इस संगठन के से किया हुए सभी अच्छाई को और सभी जीवनों को जिन्हें उसके कारण आशीर्वाद को प्राप्त हुआ है। सहायक संस्था बहुत तरह के महिलाओं से बनी हुई है। यह पर है जो शादीशुदा नहीं है, शायद स्कूल में काम करती हो पर फिर भी अच्छी और खुशवा जीवन को बिता रही हो। तुम में से कुछ बढ़ते हुए बच्चों के व्यस्त माँ हो और कुछ अपने पतियों को खो दिया है ताकि मृत्यु के कारण और अपने बच्चों के पास रही ओ बिना की पति और पिता के मदद से। तुम में से कुछ ने अपने बच्चों को बाद बड़ा कर लिया और मगर जाना कि उनको भी तुम्हारी जरूरत है। वहाँ पर तुम में से कोई बूढ़े माता पिताएं और जीवन के प्यार की जरूरत है। जहाँ कहीं भी हम जीवन में हो या समय है जब हम सब के मुसीबतों और चुनौतियों होते हैं, चाहे वह हम सब के लिए अलग हो, उसके बारे में सब जानते हैं। हमारे चुनौतियों का कारण है यह मरणशील दुनिया में रहना, कई तरह के लोगों से संग। कुछ समय हम निराशा से पूछता है किस तरह मैं इस सेलेस्टियल दुनिया में रहकर सेलेस्टियल दुनिया पर स्थिर ध्यान रख सकती हूँ। यहाँ पर समय होगा जब हम मुसीबतों और चुनौतियों के सामना करेंगे। यह पर समय होगा जब तुम अलग महसूस करोगे अकेले भी अच्छे उपहार को देने वाले से। तुम चिंता करोगे कि तुम अकेले हो, डर विश्वास की जगह लेता है। जब तुम अपने आपको इन स्थितियों में देखो, मैं तुमसे कहता हूँ कि प्रार्थना करो। मैं प्रधान इज़रा टाइप बेंशन के प्रार्थना के इस शब्दों से प्यार करता हूँ। मेरे पूरे जीवन में प्रार्थना पर निर्भर रहना सभी सलाह में सबसे जरूरी था प्राप्त हुआ है. ये मेरा एक जरूरी भाग में चुका है. एक आसरा एक मजबूती का जरिए और मेरे दिव्य चीजों के ज्ञान का बुनियाद. भले ही अनचाहे चीजें होती है, प्रार्थना में हम मदद पाते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे रक्षा करेंगे. वो शांति खामोशी की आत्मा जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है. देवदत्त पॉल ने सलाह दिया, तुम्हारे मांगे परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किया जाए. तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से पहले है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा. कितना महान वादा है. शांति है जो हम ढूंढते हैं, जो हम बहुत चाहते हैं. हम इस धरती पर अकेले रहने के लिए नहीं है. कितनी महान शक्ति बाल और दिया का मोल हमें मिला है. वो हमें उतनी अच्छी तरह से जानता है जो हम खुद अपने बारे में नहीं जानते. उसके पास ज्यादा समझ है और वो सब कुछ जानता है. वो हमारे पास होगा हमें मदद प्रदान करने के लिए अगर हम जाने चाहेंगे तो. हमें वादा दिया गया है कि हमेशा प्रार्थना करो और विश्वास रखो और सभी कुछ अच्छा होगा तुम्हारे लिए. जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हम याद करने चाहिए उधारकर्ता से सिखलाए हुए शब्दों को. जब उसने गतसमनी में क्रूस पर पीड़े को सहा था, उसने पिता से प्रार्थना किया था, तो भी मेरे नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो. शायद कुछ समय पर मुश्किल हो. यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारे स्वर्ग के पिता पर विश्वास करें और जो सबसे ज्यादा जानता है कब और किस तरह के मदद को हमें ढूंढने की जरूरत है. मुझे शायरी पसंद है. मुझे पता नहीं किस तरह, मगर मुझे पता है कि परमेश्वर प्रार्थना का जवाब देते हैं. मुझे पता है कि उसने अपना वचन दिया है कि प्रार्थना हमेशा सुना जाता है और जवाब तुरंत या बाद में मिलेगा. और मैं प्रार्थना करता और शांत से इंतज़ार करता हूँ. मुझे पता नहीं है आशीर्वादों को जो मैं ढूंढता हूँ उसी तरह से प्राप्त हो गए जैसे मैं सोचा था. मगर मैं इस सिर्फ उसे प्रार्थना करता हूँ जिसकी आज्ञा मुझे से अच्छा है. और मैं जानता हूँ कि वो मेरी प्रार्थना सुनेगा, एक उच्च जवाब देगा जो मेरे लिए और अच्छा आशीर्वाद होगा. सही में प्रार्थना सिर्फ मुसीबत के समय नहीं करने चाहिए. हमें धर्मशास्त्रों में हमेशा बतलाया गया है कि हमेशा प्रार्थना करो और अपने हृदयों में प्रार्थना करो. एक शायर जो हमें पता है और मुझे पसंद है कि शब्दों में है, हम सबको खुद से हमेशा पूछना है क्या तुमने प्रार्थना करने सोचा है. प्रार्थना और धर्मशास्त्र अध्ययन एक साथ में मदद करता है हमारे कठिन दुनिया में. सच्चाई और प्रेमरा के शब्दों को जो धर्मशास्त्र में पाया जाता है मेरे लिए कीमती चीज में. मैं उन्हें पढ़ने से थकता नहीं. मेरे धर्म शिक्षा बढ़ती है जब मैं धर्मशास्त्र को अध्ययन करता हूँ. जब हम धर्मशास्त्र को पढ़ते और सीखते हैं, हम अनुभव करेंगे वो अच्छे मार्गदर्शन और आत्मा हमें देता है. हम अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं. हम परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करके आशीर्वादों को प्राप्त करना सीखते हैं. हम स्वर्ग के पिता और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह और हमारे लिए प्रेम को सच्चे गवाही की तरह प्राप्त करते हैं. जब हमारे प्रार्थना के साथ किया गया, हम जान जाते हैं कि यीशु मसीह का सुसमाचार सच्चा है. प्रधान गोर्डन बी हिंकली ने कहा, प्रभु हम सबको आशीर्वाद दे उसकी पवित्र शब्दों को सीखने और उनसे उस शक्ति, उस शांति और उस ज्ञान को प्राप्त करें जो सभी समझ से परे है. जब हम प्रार्थना को याद करते हैं तो हम शास्त्र को पढ़ने में समय बिताते हैं, हमारे जीवन को जरूर आशीर्वाद प्राप्त होगा और हमारी मुसीबतों आसानी से सहन होगा। मैं तुम्हें साथ एक कहानी को बताता चाहता हूँ कि इस तरह हमारे स्वर्ग के पिता ने एक महिला के प्रार्थना और बहस को जवाब दिया। टिफनी के मुसीबतों पहले साल शुरू हुई जब उसके घर पर मेहमान आए थैंक्सगिविंग और फिर बड़े दिन के लिए। उसका पति डॉक्टर बनने के स्कूल जा रहा था और अब डॉक्टरी के शिक्षा में 2 साल हो रहा था। क्योंकि उसके घंटों तक काम करना पड़ता था, उसे उस मदद नहीं कर पाता था जितने हुए दोनों चाहते थे। और जो सब कुछ ही छुट्टियों को मौसम के दौरान करता जरूरी था उनके 4 जीवन बच्चे को टिफनी की जिम्मेदारी हुई। वो खुशी थी और फिर उसने सीखा कि जैसे वो बहुत प्यार करते कि को कैंसर की बीमारी हो गई थी। इस बाहर और चिंता का उस पर बहुत आसार पड़ा और वह निराश और उदास हो गई। उसने डॉक्टर दिखाया और कुछ बदला नहीं हुआ। उसकी भूख मर चुकी और वो कमज़ोर हो गई जो उसकी छोटी शरीर के लिए स्वस्थ नहीं था। उसने धर्मशास्त्र में शांति को ढूंढा और उदासी को खुशी में बदलने के लिए प्रार्थना किया, जब ना तो शांति ना या मदद प्राप्त हुई। उसने परमेश्वर से अलग महसूस किया। उसके परिवार और दोस्तों ने उसके लिए प्रार्थना किया और उसकी बहुत मदद करनी चाहिए। उन्होंने उसके पसंदीदा भोजन को उसे दिया ताकि उस शरीर तौर से स्वस्थ हो सके, मगर वो कुछ निवाले ही कहा पाती और ख़त्म ना कर पाती। एक खास मुसीबत के दिन एक दोस्त उसको वो भोजन नहीं दे सकता जो उसे पसंद था। जब किसी चीज़ काम नहीं आया, दोस्त ने कहा, यह कुछ है जो तुम्हें सुनने में अच्छा लगेगा। टिफनी ने कुछ पल सोचा और कहा, वो चीज़ जो सिर्फ मैं सोचती हूँ कि वो मुझे अच्छा लगेगा है घर का बना हुआ ब्रेड, मगर वहाँ घर का बना कुछ ही नहीं था। उस शाम के बाद टिफनी की दरवाजे की घंटी बजी। उसका पति घर पर था और दरवाजे को खोला। जब वो वापस आया, वो एक घर का बना हुआ ब्रेड लिए हुए था। टिफनी आश्चर्य में पड़ गई जब उसने बताया कि ये एक शेरी नाम के महिला ने दिया था जिसे वे अच्छी तरह से नहीं जानते थे। वो टिफनी के बहन निकोल्स की दोस्त थी जो कोलोराडो में रहती थी। शेरी और उसके पति को कई साल पहले उसे मिलाया गया था। टिफनी के घर पर थैंक्सगिविंग के समय शेरी जो ओमाहा में रहती थी टिफनी के घर आई थी निकोल से मिलने। अब कई महीने बाद हाथों में स्वादिष्ट ब्रेड को लिए हुए टिफनी ने अपनी बहन को फोन किया और बताया कि शेरी को धन्यवाद करे उसके दया को भेंट देने के लिए, बल्कि उसने जाना कि निकोल ने शेरी को प्रेरित नहीं किया टिफनी को भेंट के लिए और उसे पता भी नहीं था। टिफनी ने बाकी कहानी निकोल से जाने जब उसने अपने दोस्त शेरी से पूछा। जो कुछ निकोल से सीखा उसके लिए प्रेरणा था टिफनी और शेरी के लिए भी और मेरे लिए प्रेरणा है। उस ब्रेड मिलने के खास सुबह शेरी को 2 ब्रेड बनाने के प्रेरणा प्राप्त हुई थी, ना कि एक जो उसने सोचा था। उसने बताया कि उसे दिन एहसास हुआ कि वो उस दूसरे ब्रेड को अपने साथ काम लेकर भले उसे पता नहीं था क्यों। शेरी हिचकी जब उसे अचानक एहसास हुआ कि उसे दूसरी ब्रेड निकोल के बहन टिफनी को देना जरूरी थी जो 30 मिनट दूर शहर के दूसरे ओर रहती थी। फिर भी टिफनी के घर जाने की प्रेरणा मजबूती तो उसने प्रेरणा को सुना। जब वो पहुंची टिफनी के पति ने दरवाजे को खोला था। शेरी ने उसके याद दिया दिलाया कि वो निकोल की दोस्त थे थैंक्सगिविंग पर मिला था। वो उसे ब्रेड दिया और चली गया और ऐसा हुआ कि प्रभु ने एक अजनबी को भेजा था ना कि सिर्फ घर पर बने ब्रेड को दे बल्कि टिफनी को प्याज का संदेश भी प्राप्त हो जो उसे हुआ था किसी भी तरीके से बतलाया नहीं जा सकता है उसे बहुत जरूरी था उसे एहसास को महसूस करने कि वो अकेली नहीं है एक परमेश्वर उसके बाहर मैं जानता था और उसका अकेला नहीं छोड़ा था उस ब्रेड वही चीज हो जो उसे चाहिए था उसके पास पहुंचाया उसे जिसने वो खास तौर से जानती नहीं थी यह टिफनी के लिए प्रकट हुआ कि स्वर्ग एक पिता उसके जरूरतों को जानता है और उसे उतना प्रेम करता था मदद देने के लिए उसने उसके पुकार पर उसे मदद प्रदान किया मेरे प्यारे बहनों तुम्हारे स्वर्ग के पिता तुम्हें प्यार करते हैं तुम सबसे क्या प्यार कभी नहीं बदलता या तुम्हारे दिखावट से या तुम्हें दिखावट से या तुम्हारे चीजों या कितने भी पैसे तुम्हारे बैंक में हो इससे नहीं प्रभावित होता है यह तुम्हारे क्षमताओं और गुणों से बदलता नहीं यह हमेशा तुम्हारे पास है यह तुम्हारे लिए है चाहे तुम उदास या खुश हो निराश या आशावादी परमेश्वर का प्यार तुम्हारे लिए है चाहे तुम उसके लायक हो या नहीं यह हमेशा तुम्हारे पास है जब हम अपने स्वर्ग के पिता को सच्चाई से ढूंढते हैं सच्चे प्रार्थना और सच्चाई से समर्पित धर्मशास्त्र को सिखलाने से हमारे गवाही मजबूत होंगे और मजबूत दुनिया होगे हम परमेश्वर के प्यार को अपने लिए जानेंगे हम जानेंगे कि हम कभी भी अकेले नहीं हैं मैं तुम्हें वादा करता हूं कि एक दिन तुम्हें अपने जीवन को सोचोगे और अपने मुसीबतों के दिनों को याद करोगे और तुम जानोगे कि वो हमेशा तुम्हारे साथ था मैं तुम्हें अपने प्यार देता हूं मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद देता हूं तुम्हें हमें सभी अच्छे काम और जो जीवन तुम्हें बिता रहे हो के लिए धन्यवाद देता हूँ मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हें सभी अच्छे उपहार प्राप्त हो हमारे उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता के नाम से आमीन
Our Father in heaven,
हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपके सामने आते हैं और धन्यवाद देते हैं हमारे सेवियर यीशु मसीह के लिए और हमारे सब बहनों के लिए, इस गायक मंडली के लिए, और हम धन्यवाद देते हैं प्रेसिडेंट थॉमस एस मॉन्सन के लिए. हम धन्यवाद देते हैं इन शब्दों के लिए, ये भाषण जो हम सिस्टर बर्टन, सिस्टर रीव्स और सिस्टर स्टीवंस की सुन सके. हम रिलीफ सोसाइटी के लिए धन्यवाद देते हैं. हम प्रीस्टहुड के लिए धन्यवाद देते हैं. हम धन्यवाद देते हैं कवनेंट के लिए, और हम आशा करते हैं कि आप हमें अपने कवनेंट रखने का डिजायर दें, स्क्रिप्चर्स को पढ़ने के लिए और उनको ध्यान से पढ़ने के लिए,
We ask the Father to help us.
हम आशा करते हैं कि आप हमें समझ दें कि हम इस धरती पर, हमें इस धरती पर क्या करना चाहिए आपकी बेटियों की तरह. हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में. आमीन.